जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरव भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री मद्भागवतम की जय, वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्कधुना उदित। भगवान श्री कृष्ण जब सुधाम में प्रत्यावर्तन किए, धर्म और ज्ञान सब साथ में लेकर भगवान के स्थान को पूर्ण करने के लिए सूर्य के समान दिदीप्यमान भागवत पुराण की उदय हुआ। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के साहित्य अवतार हैं। तो श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 7, शिव जी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं, इस अध्याय के आज 30 और 31 दो श्लोक हैं। 30 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, फिर 31 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे। मैं 30 आप खुद कर लेता हूं। और आज रामानंद राय के क्या आविर्भाव तिरुभाव तिरुभाव तिथि, तो समय होगा था थोड़ा, फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत कहेंगे। अच्छा, 30 नंबर श्लोक में खुद ही पढ़ लेता हूँ। छाया तु अधर्मोर्मीषु यैर्विसर्ग नेत्रत्रयं सत्तो रजस्तमांसि। संज्ञात्मनः शस्त्रकृतस्तवेख्याः छन्दोमय देव ऋषि पुराणः। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म में देखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तथा तम आपके तीन नेत्र है, छंदों से युक्तों सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत है, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा है। उसके बाद 31 नंबर श्लोक। न ते गिरित्र अखिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेन्द्र गम्यम ज्योतिः परम यत्र रजः तमः च सत्वं न यद्ब्रह्म निरास्तभेदम् नते गिरित्राखिलोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठ सुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् माताएं शब्दार्थ न नहीं ते आपका गिरित्र हे पर्वतों के राजा अखिल लोकपाल भौतिक कार्यकलाप के विभागों के सारे निर्देशक विरिंच ब्रह्मा जी वैकुंठ भगवान श्री विष्णु सुरेन्द्र स्वर्ग के राजा, गम्यम सरलता से समझा जाने वाला, ज्योति ही तेज, परम दिव्य, यत्र जहां, रज रजोगुण, तम च तथा तमोगुण, सत्वम सत्वगुण, न नहीं, यद ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, निरस्त भेदम देवताओं तथा मनुष्य में किसी अंतर के बिना। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज सत्व रजो तथा तमोगुण से परे हैं, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निर्देशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। दोहराइए, हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज सत्व रज तथा तमोगुण से परे हैं, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निर्देशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। तात्पर्य, ब्रह्म ज्योति वास्तव में भगवान का तेज है, जैसे कि ब्रह्म संहिता की 5:40 में कहा गया है, जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि अशेष बहुधादि विभूति भिर्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त है। उनके दिव्य रूप का दिदीप्यमान तेज निराकार ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म तथा असीम है और असंख्य लोकों की विविधताओं को उनके विभिन्न तेज सहित करोड़ों ब्रह्मांड के रूप में प्रदर्शित करता है। यद्यपि ब्रह्म का निराकार पहलू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों का विस्तार वंश होता है, किंतु उन्हें उन निर्विशेषवादियों की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9:4 में भगवान श्री कृष्ण कहते कि मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं अपने निराकार पहलू से इस सारा ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। इस प्रकार अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकार पहलू निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। इसी ब्रह्म तेज में लीन रहने की इच्छुक मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। श्लोक 29 में उल्लिखित मंत्र मुखानि पंचोपो निषेध स्तवेश कहलाता है। मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते समय इन सभी तंत्र को बा मंत्र को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, तत्पुरुषाय विद्महे शांत ही महादेवाय धीमहि विद्यायै तत्र रुद्र प्रतिष्ठायै प्रचोदयाद्धृतै अघोरोभ्य स्तमः अथ अघोरेभ्य मोहा अघोरस्य रक्षा अघोरस्य निद्रा सर्वस्य सर्वव्याप्त्वै सर्व सर्वेभ्यो मृत्यैवे नमस्तेस्तु क्षुधा रुद्र रूपभ्य तृष्णाः वामदेवाय रजा ज्येष्ठाय स्वाहा षष्ठाय रत्यैः रुद्राय कल्याणी कलाय काम कलविकरणाय सन्धीन्यै बलविक्रणाय क्रिया बलाय बुद्धै बलच्छाया प्रमथनाथ धान्त्रेहि सर्वभूत दमनाय ब्राह्मण्यहि मन स्वसिन्यहि उन्मनाय जोरा सद्योजात प्रपद्यामिहि सिद्धैहि सद्योजाताय नमः रुद्धै भवे भवे आदित्यहि अभवे लक्ष्मीहि नातिभेदे मेधा भजस्व मांकांतहि भव स्वाधा उद्भवाय प्रभु ईशान सर्वविद्यानां सशिन्यहि ईश्वर सर्वभूतानां अभयदा ब्रह्माधिपति ब्रह्मणि धीपति ब्रह्मन् ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मष्टदा शिवमे अस्तु मरीचयि सदा शिव ज्वलि नहीं। निराकार ब्रह्म भौतिक सृष्टि के अन्य लोकपालों तो को अज्ञात है, जिनमें ब्रह्मा इंद्र तथा यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी सम्मिलित है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि भगवान विष्णु सर्वज्ञ नहीं है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, किंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि उनके सर्वव्यापी विस्तार में क्या हो रहा है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनका विस्तार है, मया ततम इदम सर्वम, किंतु उन्हें प्रत्येक वस्तु की निगरानी नहीं करनी होती। न चाहं तेषु अवस्थितः, क्योंकि ब्रह्मा शिव तथा इंद्र जैसे अनेक लोकपाल विद्यमान हैं। ओम अज्ञानातिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शिलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। छाया सधर्म मिशुः यो विसर्गे नेत्र त्रयं सत्वो रजस्तमांसी संज्ञात्मनः शास्त्रकृतः स्तवेख्या छंदोमय देव ऋषि पुराण। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म अधर्म में दिखती है, जिससे नाना प्रकार की अधार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती है। प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तथा तम आपके तीन नेत्र है। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत है, क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों की लेखा है। नते गिरित्र खिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेन्द्र गम्यम ज्युति परंग यत्र रजस्तमंश्च सत्वं यद् ब्रह्म निरस्त भेदम। हे गिरीश, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज सत्व रजो तथा स्तमगुण से परे है, अतएव इस भौतिक जगत के विभिन्न निर्देशक लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न ही यह जान सकते हैं कि वह कहाँ है। वह ब्रह्मा विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। भगवान शंकर जी की बात शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये जो स्तुति ले? दो श्लोक ये स्तुति चल रहा है, शंकर जी की स्तुति। लोकपाल लोक अर्थात स्वर्ग के देवताएं हैं, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गा रहे हैं। क्योंकि पहले आप श्रवण करके आ चुके हैं कि समुद्र मंथन की लीला प्रारंभ हो चुका है। कौन सा मनु की शासन काल में ये हुआ था समुद्र मंथन? चक्षुष मनु, छठा मनु चक्षुष मनु के जो शासन कर रहे थे उन्हीं की शासन काल में ये समुद्र मंथन की लड़ा संगठित हुआ। उस समय स्वर्ग के राजा थे मंत्रदिम्न नामक व्यक्ति, इंद्र पद में अधिष्ठित थे। और देवताओं के राजा कौन थे? बलि, महाराज बलि। और राक्षसों के देवताओं के संघर्ष हमेशा चलते रहता है, क्योंकि स्वर्गों के आधिपत्य यदि भगवान विष्णु ने देवताओं को दिए हैं, लेकिन देवता ने राक्षस लोग कभी कभी बलात्कार से छीन लेने के लिए भी प्रयास करते हैं। लेकिन आप पहले से ही घटना को श्रवण करके आ चुके हैं किस प्रकार जो इंद्र पद में अधिष्ठित थे मंत्रदिम्न ने बड़े घमंडी थे। इंद्र की पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, कभी कभी भगवान स्वयं भी ब्रह्मा की पद तथा इंद्र की पद को संभालते हैं यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता। लेकिन इसलिए दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु को दर्शन करके स्वर्ग में पधारे और इंद्र को देखकर सामने हैं, उनकी गले में जो महाप्रसाद की माला भगवान विष्णु की महाप्रसाद माला स्वयं धारण किए थे, इसको इंद्र को प्रदान किए, इंद्र की गले में डाले। इंद्र लेकिन घमंडी, थोड़ा समय रखा माला, तुरंत ही माला को निकाल के किसके गले में डाल दिया? हाथी के गले में। महाप्रसाद की माला, वो सोचे क्या, अरे मेरे स्वर्ग में इतने सारे पारिजात पुष्प है, कितनी ताजा ताजा फूल हमारे पास है, और ये क्या मेरे को अलग की माला मेरे गले में डाल दिए। और माला फिर जो हाथी के गले में आला, हाथी क्या महाप्रसाद की माला समझेगा? इंद्र की अरावत उसको सुंड में नीचे गिरा दिया और उसके बाद पैर में कुचल दिया। ये सब किसके सामने हो रहा था? दुर्वासा मुनि के सामने। दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उसको अभिशाप दिए कि जाकर जिसलिए तुम्हारे इतने घमंड है तेरे मन में, तेरे और स्वर्गों के ऐश्वर्य तेरे से छीन जाएगा। तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारे समस्त ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को जब राक्षसों को पता चला तो तुरंत ही आक्रमण किए स्वर्ग को शुक्राचार्य के सलाह से। और इस समय देवता लोगों ने उनके साथ युद्ध में युद्ध करने संभव न समझकर तुरंत ही अपने गुरु बृहस्पति के ऊपर आदेश लेकर उनसे सलाह लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी फिर सारे देवताओं को लेकर कहाँ गए? क्षीर सागर के किनारे, क्षीर सागर क्षीर समुद्र में है। क्षीर दक्षाई विष्णु शयन करते, क्षीर समुद्र के बीच में एक द्वीप है श्वेत द्वीप, तो उसी द्वीप में भगवान विष्णु क्षीर दक्षाई विष्णु आनंद सज्जा में है और लक्ष्मी के साथ वहाँ शयन कर रहे थे, वह वहीं पर निवास करते थे। तो देवता लोग ने जाकर उनकी स्तुति की है, लेकिन भगवान तो प्रसन्न हुए और उनको सलाह दिए, हाँ एक न्याय बताए। भगवान सब समय देवताओं के पक्ष में रहते, कि देवता लोग यदि भगवान किसी की पक्षपात नहीं करते हैं समहंग सर्वभूतेषु, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति विशेष रूप में उनके शरण में जाता है भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। राक्षस लोग कोई भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, ये वो अपने बाहुबल के ऊपर विशेष भरसा करते हैं, लेकिन देवता लोग हमेशा संकट में विपद में भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। इसलिए भगवान ने सारे स्थिति को समझ कर तो देवताओं को क्या सलाह दिया कि अब ये तुम लोग उनके साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। किन के साथ? राक्षसों के साथ। अब विशेष में मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि राजा कौन है? बलि, प्रह्लाद की दायद है, प्रह्लाद के पोता है, प्रह्लाद की विरोचन, विरोचन की पुत्र बलि है। बोले मैं भी प्रह्लाद को वचन दे चुका हूं। क्या वचन दिया हूं? तुम्हारे वंश में मैं और किसी को भविष्य में वध नहीं करूंगा। तो इसलिए ये भी भक्त है मेरी, प्रह्लाद की दायद है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। सम्मुख युद्ध न करके इनको कैसे भी कूटनीति से है भाई, कि अभी आप लोग संधि कर लो। किसके साथ? राक्षसों के साथ। कि चलो संधि कर लो और एक क्षीर सागर के मंथन के लिए दोनों पक्ष एकत्रित होकर इसकी मंथन करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। तो अमृत पान करके आप लोग रोग व्याधि आदि क्लेशों से मुक्त हो जाओगे और प्राय अमरत्व व दीर्घ समय तक जीवित रह पाओगे, ऐश्वर्य भोग पाओगे। भगवान यहां तक कहे कि देखो ये अहिमुषिक न्याय को अभी स्वीकार कर। अहिमुषिक न्याय के जानते हैं? सांप और चूहा का न्याय। एक शिकारी ने दोनों को पकड़े, सांप को और चूहा को दोनों को पिंजरे में डाल दिया था अंदर में, तो अंदर से दोनों कैसे निकल नहीं पाए, कोई तो रास्ता नहीं। लेकिन ऐसे ही तो जो चूहा को सांप खा जाता है, लेकिन सांप बहुत चालाक था, कहा कि देखो अभी यदि मैं खा लूंगा तो कुछ फायदा नहीं, मुझे तो बात में पकड़ी मार देगा। तो ये चूहा का काम है ये काट सकता है किसको, उसको जाल को काट सकता है, लेकिन ये काट देगा छेद बनाएगा, लेकिन थोड़ा ऊंचा था, ऊंचा में होल ऊपर था। चूहा को जो कहा कि सांप देखो तुम होल बना दो, बाद में हम दोनों निकल जाएंगे, हैं? चूहा ने कहा कि ऊपर में जो जहां पर जाल लगे उतर, नीचे तो ये लोहा की रड जैसे, यहां तो काटेगा नहीं, ऊपर से काटेगा जाल, मैं तो ऊपर को चढ़ नहीं पाऊंगा। सांप वाला चिंता मत करो, मैं फणा ऐसे उठाता हूँ, तुम मेरे फेणा के ऊपर चढ़ जाओ, फणे के ऊपर चढ़ के काट दोगे। हैं चूहा वाला ठीक अच्छा है, फणा में बैठा और वो फणा वहां उठाए, बस चूहा जाल को काटा। इसके बाद सांप ने निकाला, निकाल के बस चूहा को आओ, चूहा आते ही उनको निकाल लिया। तो इसलिए भगवान कहे कि जो सब जिस प्रकार जिस जो है वही मुसिक नए, जैसे सांप और चूहा का नए, इस प्रकार अभी आप लोग संकट हो, संधि कर लो राक्षसों के साथ, समय जब अनुकूल होगा तुम्हारे तब फिर तुम राक्षसों के ऊपर चढ़ाव करना, अभी करने से तुम जीतोगे नहीं है। कूटनीति भी भगवान ने सिखाते हैं, तो इसलिए दोनों संधि कर लिए, देवता और राक्षस मिलके समुद्र को मंथन पहले सुन चुके हैं है? भगवान मंदर पर्वत को लाके क्या बनाए, मथानी बनाए, वो तो लेके आते थे दोनों ही कुचल के, मैंने पहाड़ दोनों को गिर रहा था, तो राक्षस और देवताएं दोनों ही कुछ उस पहाड़ के नीचे कुचल गए थे। भगवान फिर इनको दोबारा जीवित किए लाकर, फिर जो पर्वत को लाकर मंदिर पर्वत को जो खिरसागर के बीच में डाले मथन के रूप में रखने के लिए, लेकिन नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, पूरा डूब गया। फिर हवता सो, अरे पूरा तो डूब, मथनी किसको बनाई, मथनी जिसको बनाई वो डूब गया। इसलिए भगवान ने फिर कच्छप अवतार कुर्म अवतार लेकर नीचे जाकर उसको उठाए, पीठ से उठा के फिर, लेकिन फिर भी मथन लेकिन ऊपर से हिलते रह गया, बैलेंस नहीं रहा। फिर भी हमने वासुकी नाग को भी फिर जाएगी पटाए, भगवान ने कहने पर वासुकी नाग राजी हुआ, क्योंकि जो रस्सी होगा ऐसे ही जंतु को रस्सी हो जिसमें इतनी बड़े पर्वत का रस्सी को मंथन करने के लिए रस्सी, और सांप का शरीर में कोई हड्डी नहीं होता है, और जितने भी पशु सबका सबके बाद जो भी जंतु उसके शरीर में हड्डी होता है, तो इसलिए यही मंथनी का ये रस्सी का काम करेगा। वासुकी नाग को बुलाए, लेकिन गरुड़ को सब पीठ में तो भगवान ने मंदर पर्वत को बैठा के रखकर लेके आए थे, स्वयं भगवान सार राक्षस देवता सभी गरुड़ के पीठ में बैठे, मंदर पर्वत भी रहा, भगवान स्वयं बैठ आकर पहुंच गए। इसके बाद गरुड़ कहे कि तुम यहां से चले जाओ। गरुड़ ने कहा कि क्यों मुझे भेज रहे वापस, मैं भी थोड़ा देखूंगा, क्या देखूंगा, समुद्र के मंथन देखने में मुझे की थोड़ा अभी इच्छा है। भगवान कहे कि देखो जब तुम इधर रहोगे तो वो नहीं आएगा, कौन, वासुकी, जो रस्सी के रूप में जिसको उपयोग किया जाएगा, ये तुम इधर जब तक रहोगे वो नहीं आएगा इधर, इसलिए तुम मेरे आदेश पालन करके यहां से चले जाओ। चला गया कौन, गरुड़ चला गया। तो वासुकी नाग आया, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर, लेकिन खींचते ही तो बारा फिर ही हलने लगा, ऐसे ही हिलने लगा, क्योंकि ऊपर से भी उसको बैलेंस चाहिए है। इसलिए भगवान ने फिर हजारों भुज वाला है विशाल रूप धारण करके ऊपर बैठे, जाकर नीचे भी कुर्मो के रूप में बैठे, ऊपर में कुर्मो के रूप में ये घूम रहा था, ये जो मथनी है तो उनको थोड़ा थोड़ा खुजली हो रहा था, अच्छा लग रहा था। वो कुर्मो कितनी बड़ा था, कितनी बड़ा का कितनी आकार के कुर्मो जो था कछुआ कितने बड़ा था, 800,000 माइल है, 800,000 माइल का व्याप्त था, इतनी बड़े विशाल 800,000 माइल कितना होता जान, कल्पना नहीं कर पाओगे। हम इसको देख नहीं पाएंगे, हम देखें क्या देखें, थोड़ा बहुत जैसे हाथी की जैसे कोई देखेगा, चिट्ठी देखेगा, हाथी का क्या देखेगा, थोड़ा पैर में देखे कोई, तो हम कहाँ से देखेंगे, हमको हमारे कछुआ हमारे दृष्टि में आने का सवाल ही नहीं है, विशाल कछुआ 800,000 माइल तक व्याप्त था। तो भगवान ने फिर विराट रूप, यहाँ तो नीचे कछुआ और ऊपर में फिर इस रूप में बैठे, अजय माने भगवान अजीत फिर सहस्र भुजा के साथ बैठ कर फिर उसको सपोर्ट दिए। ऐसे बहुत मुश्किल से फिर मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले तो मुख के साइड में भगवान जानते हैं हम जो बोलेंगे, देवता लोग जो बोलेंगे राक्षस ठीक ठीक उसका उल्टा बोलेंगे है, तो इसलिए जानबूझकर दे कि पहले जाकर वो वासुकी का मुख के तरफ पकड़ लिए देवता लोग, राक्षस लोग बोले कि हम कुछ कम है ना क्या है, हम भी कश्यप मुनि के दायद है, दीति के पुत्र है, दीति दोनों हम हमारे बहुत तपस्या, हम कुछ कम तपस्या करने वाला ना क्या, हम भी बहुत तपस्या किए, बहुत पुण्य कर्म किए, हम पूछ क्यों पकड़ेंगे, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। भगवान मुस्कुराते हैं, देवताओं के चलो उस साइड को, फिर वो पूछ की तरफ आई, वो मुख की तरफ, क्योंकि जब मंथन प्रारंभ होगा वासुकी जोर से श्वास लेगा, श्वास लेके जो श्वास छोड़ेगा क्या छोड़ेगा, सारे 20 की हवाएं 20 जी वासुकी सार, अब 20 का ज्वाला किसके ऊपर, किसी के ऊपर पड़ेगा, सारे जो मुख को पकड़े हैं सारे, तो इसलिए राक्षस लोग बहुत परेशान हो गए हैं, शरीर पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा कला है इतना हो गया, लेकिन बोलने के कोई सवाल नहीं, अभी नहीं बोल सकते कि हम पूछ पकड़ेंगे तुम, अपने पहले बोल चुके हम मुख पकड़ेंगे, अपना इज्जत रखने के लिए हैं बोलते भी नहीं, लेकिन बहुत परिश्रम करके जो भी हो वहां से देवता लोगों को भी देवता देव नहीं राक्षस लोग ऐसे देखने के लिए काले नहीं होते हैं जैसे वो पेंटिंग वगैरह करते ना काले काले, और ये राक्षस लोग भी गोरे गोरे बहुत अच्छे शरीर होता है। लेकिन समुद्र मंथन समय में इसका धुआं से वासुकी के मुख से जो विषाक्त धुआं से उनके शरीर सब काले पड़ गया था है? देवता लोग तो पूछ की तरफ थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा हवा उनके पास जाता था, लेकिन उनकी केवल वस्त्र जो पहनते उसी का पर से धुआं लगता था, शरीर के अंदर कुछ कुछ इसका कोई आभास नहीं मिला। तो इस प्रकार मंथन जब कर रहे थे बहुत है, भगवान भी स्वयं उनसे सम्मिलित थे है? भगवान भी स्वयं मंथन कर रहे थे देवताओं की साइड में। तभी सबसे पहला जो वस्तु निकला सागर में समुद्र मंथन से क्या मिल निकला, हड़ाहड़ा विष निकला है? थोड़ा नहीं, इतने विशाल परिमाण में है, पूरे समुद्र विष में ही भर गया ऊपर में। जब मंथन करने से क्या निकलता है, तो दूध को दही बना के दही से मंथन करोगे तो ऊपर से माखन निकलता ना, माखन आता है ऊपर, फेंड से फेंड फेंड आ जाता है। ये जो समुद्र को मंथन किया तो ऊपर में नीला 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 पूरा फेंड भर गया, लेकिन वो फेंड सब क्या था, विष था है? पूरा विष उसका, इतनी उसकी उत्ताप था, सब परेशान हो गए देवता राक्षस सब परेशान हो गए भगवान की तरफ देखे। लेकिन भगवान ने उनको केवल इंगित किया, कहाँ जाओ, शंकर जी के पास जाओ है, शंकर जी के जाओ है, मैं तो विष क्या खाऊंगा, मैं विष का बचपन में जब भगवान जो अवतीर्ण हुए थे है, विष लेके आए था कि पिलाने के लिए, कौन पुतना है, भगवान ने विष पिए उसका प्राण को पिए हैं, भगवान कहे कि ठीक है ओ विष निकले, चलो शंकर जी के पास चलते। भगवान ने स्वयं भी गए, ब्रह्मा और भगवान स्वयं विष्णु भी थे उनके साथ, सभी जितने भी देवता इंद्र चंद्र वरुण जाए सभी देवता लोकपाल सभी मिलकर कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर जी बैठे हुए थे किसके नीचे, वृक्ष के नीचे हैं, विशाल बट वृक्ष के नीचे हैं भगवान बैठे थे। देखो शंकर जी ने सब, शंकर जी का जो भक्त होते हैं बहुत धनी 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 लोग होते हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित लोग समाज में होते हैं, उनके मकान से विशाल विशाल मकान होता है, बहुत धन धन धान्य में है, ऐश्वर्युक्त रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी अपने के लिए कोई घर भी नहीं बनाते, वृक्ष के नीचे रहते हैं है? घर भी नहीं बनाते हैं, ऐसे ही पेड़ के नीचे रहते, वस्त्र भी पहनते नहीं है, है? ज्यादा ज्यादा कोई हुआ तो क्या बाघ की छाल है, व्याघ्र चर्म थोड़ा ऐसे ही लपट लेते हैं है? पूरे है? पानी तो उनके जटा में पकड़ के रखे, किसको, गंगा है? गंगा को पकड़ के रखे, राख शरीर में राख माख लेते हैं है? कहाँ का राख है, श्मशान की, श्मशान की राख को शरीर में माखते हैं है? उससे भी वो पवित्र, देखो शंकर जी के समान पवित्र कोई, पवित्र सदा पवित्र रहते हैं, यदि वैसे ही उनके आचरण से उत्पटांग आचरण है, है? गले में सब कौन रहता, सांप बिच्छू, इसलिए माँ जसोदा ने आए थे तो नंदगांव में दर्शन करने के लिए मना कर, नहीं नहीं, लेकिन शंकर जी ऐसे अद्भुत चरित्र वाले हैं, लेकिन जो कि गंगा फिर उनकी जटा में ही है, और उन क्या, तो ऐसे भगवान शंकर जी पार्वती के साथ बैठकर कुछ कथन, और कई मुनि ऋषि सनचार कुमार आदि सनक सनातन आदि सब ऋषि को बैठे थे, भगवान शंकर जी उनके साथ में वार्तालाप कर रहे थे, कुछ हैं शास्त्र चर्चा चल रहा था है। तभी देवता लोग ने पहुंचे, देवता सभी देवता लोग लोकपाल, उनके राक्षस भी सम्मिलित थे, राक्षस भी साथ में जाते थे। भगवान भी यही जानते थे, यदि इधर भगवान विष्णु की स्तुति करना होता राक्षस लोग को वो आधार नहीं जुटते थे उसमें, बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे उसका, उसको क्या स्तुति करेंगे। चलो भगवान ने इंगित कर दिया, क्या कहाँ जाओ, शंकर जी के पास, क्योंकि शंकर जी देवता लोग भी गए, राक्षस लोग भी गए, राक्षस लोग भी शंकर जी को लाइक करते हैं, तो सभी लोग जाकर मिले, मिलकर हैं स्तुति प्रारंभ करते हैं, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में विष्णु नेतृत्व में स्तुति प्रारंभ किए हैं। तो इसी स्तुति से ही हम आज ये पढ़ रहे हैं भगवान की भगवान शंकर, लेकिन श्रीधर स्वामी कहते कि ये जो स्तुति है, ये स्तुति प्रकृत में भगवान विष्णु की ही स्तुति है, सदाशिव की स्तुति है। ये स्तुति कोई गुणावतार भगवान शंकर जी का स्तुति नहीं है। किसका स्तुति है? सदाशिव। सदाशिव का अर्थ ही वो विष्णु ही है। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते कि स्तुतियां प्रकृत में सदाशिव की स्तुति है, और ये विष्णु की स्तुति से अभी निज से ही तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे कि ये जैसे कहता कि हे प्रभु, इन ये श्लोक में जैसे आज के श्लोक में कहते कि हे प्रभु, आपका तो परिचय है बिरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम। आप ये भी आपको समझ नहीं पाते, कौन कौन? बिरिंच ब्रह्मा, वैकुंठ विष्णु, और सुरेंद्र इंद्र आदि देवता लोग, ये लोग भी आपके आपके बारे में ठीक ठीक से जान नहीं पाते। विशेष रूप में आपका ही जो शरीर के आपकी ज्योति जो फैला हुआ है, शरीर का जो ब्रह्म ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति सत्त रज तम तीनों गुण के परे हैं। ज्योति परंग यत्र रजस्तमश्च, ये जो ब्रह्म ज्योति आपके शरीर के तेज जो फैला हुआ है, ये तेज जो कि सत्त रज तम गुण के परे हैं, इसलिए आपको तो ये लोग विशेष रूप में ये ब्रह्म तेज को दर्शन करना बा आपके बारे में जानना, इसके बारे में विशेष कुछ जानने के लिए ये लोग असमर्थ है। कौन कौन? बिरिंच वैकुंठ सुरेंद्र, हाँ, ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवता लोग भी जानने के लिए असमर्थ है। इसलिए हे गिरीश, पहले श्लोक में इनको देवता लोक ने बा सभी लोकपाल लोक में उनको एड्रेस करते कि गिरित्र है, गिरीश, गिरीश का अर्थ जो पर्वतों की है, गिरीश गिरित्र है पर्वतों के राजा है। इस तो इसलिए क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज आपके जो शरीर से फैला हुआ है ब्रह्म निराकार ब्रह्म तेज सत्व रज तम गुण से परे हैं, अतः इस भौतिक जगत के विभिन्न निर्देशक जो लोकपाल ने इसकी प्रशंसा, इसको दर्शन करना भी दुर्लभ है, और इसकी प्रशंसा कर सकने में अज्ञात है, जान नहीं सकते, इसके बारे में पूरे ज्ञान उनके पास में नहीं है। यहाँ तक कि ना ब्रह्मा को यह ज्ञान है, ना विष्णु को है, ना इंद्र को, ये ब्रह्म ज्योति के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि क्योंकि भगवान को, भगवान विष्णु को ये कहे कि भगवान विष्णु को भी ब्रह्म, ये शंकर जी का महिमा बाबा शंकर ब्रह्म ज्योति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते निराकार ब्रह्म भौतिक सृष्टि के अन्य लोकपालों तक को अज्ञात है, जिसमें ब्रह्मा इंद्र तथा यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी सम्मिलित है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि भगवान विष्णु सर्वज्ञ नहीं है। भगवान श्री विष्णु सर्वज्ञ है, किंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि उनके सर्वव्यापी विस्तार में क्या हो रहा है। ब्रह्म ज्योति के बारे में इतने जानने के लिए भगवान स्वयं स्वयं इच्छुक नहीं रहते, उनकी तेज के शरीर का तेज फैला हुआ है, वो इसी ब्रह्म ज्योति के अंदर तो कोई क्या उसकी चिंतन न करे। भगवान सब समय किसकी चिंतन करते हैं? अपने भक्तों की, शुद्ध भक्तों की चिंतन करते हैं। तुम्हारा हृदय सिना गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मर वैष्णव पराण। तो अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला में व्यस्त रहते हैं भगवान, है ब्रह्म ज्योति के बारे में इनको चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ब्रह्म ज्योति के बारे में भगवान जैसे, इसलिए प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं नवम अध्याय की चौथा श्लोक, चौथा श्लोक से और चौथा श्लोक करते हैं जिसमें भगवान ने कहते कि प्रकृत में कि मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नासुते नाहं तेषु अवस्थितः। जो मैं अपने निराकार पहलू से इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ, मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना, मैं निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। इनडायरेक्टली यहाँ पर ब्रह्म ज्योति का उल्लेख करते, सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ निराकार रूप में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उनके बारे में नौचाहन तेसु अवस्थित, मैं उधर रहकर भी नहीं रहता हूँ, ये मेरे ज्योति फैला हुआ है, होने पर भी मैं इसमें रह, इसमें मेरा उपस्थिति है भी और नहीं भी है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति में भगवान को इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। विष्णु सर्वज्ञ होने पर भी उसके बारे में विशेष रूप में ब्रह्मज्योति, उन्हीं के शरीर जो फैला हुआ तेज ब्रह्मज्योति के बारे में डिटेल जानने की उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये स्तुति तो विशेष रूप में शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा चापलाइस तो करना पड़ता, किसी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते थोड़ा चापलाइस भी करना पड़ता ना। शंकर जी तो भोलानाथ है, बैठे इनको जो जो बोले बस है, बात में देखेंगे अपना सब पत्नी से सलाह लेंगे, किससे, पार्वती से, ऐसे देखो ऐसा हो क्या करना चाहिए। पार्वती ने तो जानते थे शंकर जी की महिमा, वो बात में अनुमति देते हैं कि ठीक है, वो जानते थे शंकर जी ने शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यदि ये संपूर्ण विष को पान कर लेंगे तो। इस प्रकार देवता लोग ने इसलिए विशेष रूप में ये श्लोक में शंकर जी को ही भगवान के रूप में स्तुति करते हैं, सभी कारण के कारण। हिरण्यकशिपु भी जब स्तुति कर रहा था किसका, ब्रह्मा का, उनको ही कहा कि आप ही भगवान है, किसको वरदान लेना था, किससे, ब्रह्मा से, इसलिए ब्रह्मा को कहा कि आप ही सब, आप ही भगवान हो, तीनों लोग के मालिक है और क्या विष्णु शिव सब आपका ही स्तुति करते हैं। कभी कभी किससे कुछ लेना, काम बना, काम लेना पड़ता है, थोड़ा चपड़ासी करना पड़ता है। तो यहां से देवता लोग ने यदि जानते थे विष्णु ही सब कुछ है, विष्णु है, लेकिन राक्षस भी उनके साथ मिले हुए थे, सब लोग साथ में गए थे, तो इसलिए ठीक है, हाँ से हाँ हमारो काम हमारा हो जाए, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गाए। और इसलिए लेकिन आचार्य लोग ने श्रीधर स्वामी जैसे कहते कि स्तुति प्रकृति में किसका स्तुति, किसी का किसके लिए स्तुति है, भगवान सदाशिव अर्थात विष्णु के लिए ही स्तुति है। लेकिन अभी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए दोनों मिले हुए हैं। आज भी मैं कहा था जैसे प्रारंभ में क्या है, रामानंद राय के तिरुभाव तिथि है, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण महे अन्य, राधा कृष्ण से अभिन्न। और जैसे ही ब्रज लीला में राधा कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में कौन थे, जितने बहुत सखी थे लेकिन उनके प्रिय सखी सबसे ललिता और विशाखा, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के रूप में थे, उनको उनका उनकी इनको सहायता करने के लिए उनकी लीला में विशेष रूप में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद है। रामानंद रे कृष्ण कृष्ण कथा स्वरूप स्वरूप गान विरह वेदनाते रखे प्रभुर प्राण। महाप्रभु के जब मैंने राधा भाव को अंगीकार करके जब कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रहे थे तब ये दोनों इनको सहायता करते थे, रामानंद और कृष्ण कथा स्वरूप गान, रामानंद राय इनको कृष्ण कथा श्रवण कराते थे है? और स्वरूप दामोदर गोस्वामी चंडीदास विद्यापति और जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद आदि गायन करके उनको सांत्वना देते थे। इसलिए पुरी में जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रहता था तो उसका नाम था भावानंद, भावानंद राय, भावानंद को चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, भावानंद तुम तो साक्षात पांडु के अवतार हो, किसके, महाराज पांडु, पांडु के कितने पुत्र थे, पांच पुत्र, इसी प्रकार तुम्हारे भी पांच पुत्र है और ये पांच पुत्र ही वही पांच पांडव है, और मध्यम पांडव जैसे अर्जुन था इसी प्रकार तुम्हारे जो मध्यम पुत्र है वो कौन है, रामानंद है, रामानंद रामानंद राय मुझे मेरी प्राण के समान है, तुम्हारे पांच पुत्र मरो प्रिय पात्र, रामानंद सह मर देह भेद मात्र है। महाप्रभु कहते थे कि देखो तुम्हारे पांच पुत्र तो मुझे अति प्रिय है, ये पांच पांडव है, लेकिन तुम्हारे जो मध्यम पुत्र ये रामानंद, रामानंद और मेरा केवल शरीर का भेद है, हमारे आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए जैसे कृष्ण अर्जुन, इसलिए कभी कभी रामानंद राय को अर्जुन के भी कहा जाता, लेकिन और गौरदास गण दीपिका में इनको ललिता सखी कहा गया, लेकिन अधिक से अधिक वैष्णव के मतामत के अनुजाई वो विशाखा है, ललिता सखी है स्वरूप दामोदर। इसलिए ये दोनों के मिलित अवतार इनको माना जाता है रामानंद राय को, किसके? विशाखा तथा अर्जुन। तो इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु के साथ रामानंद राय कैसे मिलन हुआ, पहले जानते नहीं थे, पुरी में थे वो, तो रामानंद राय प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र के अधीन में है, माड्रास के गवर्नर थे, माड्रास के राज मैंने एरिया में, उड़ीसा का साम्राज्य तब तक कहाँ तक व्याप्त था, दक्षिण भारत में विद्यानगर राजमहेंद्री माड्रास तक व्याप्त था। तो इसलिए उस एरिया के इनको गवर्नर पद में नियुक्त कर दिए थे, कौन? प्रताप रुद्र। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की गश्त में जाने के लिए तैयारी किए हैं, तभी सर्व भट्टाचार्य ने कहे कि देखिए महाप्रभु आप जा रहे हैं दक्षिण भारत की गश्त में, तो आप जरूर इस व्यक्ति को मिलना। कौन सा व्यक्ति? राय रामानंद। रामानंद के समान राधा कृष्ण की प्रेम लीला बा माधुर्य लीलाओं को कोई और डिटेल नहीं जानता है, ऐसे प्रेमी भक्त संसार में दुर्लभ है। आप अवश्य रामानंद राय के संग करना, दक्षिण भारत में इनको मिलना, वो गवर्नर के पद में अधिष्ठित है। शूद्र ऐसे एक जन्म से कायस्थ फैमिली से हैं, और चैतन्य महाप्रभु साधारण विषय के साथ प्रताप रुद्र को मना कर देते, दर्शन नहीं देंगे, विषयी व्यक्ति है, राजा है। लेकिन यहाँ पर रामानंद भी राजा था, गवर्नर था, लेकिन होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु उनको विशेष कृपा प्रदान किए थे। जो दक्षिण भारत की गश्त में आए तब उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे बैठकर स्नान कर, महाप्रभु ही बैठे थे स्नान कर नदी किनारे, उस समय रामानंद राय बड़े थाट बाट में है, राजा था, इसलिए पूरा पालकी में बैठकर पूरे म्यूजिक पार्टी चलता था, सो थाट बाट में आ रहा था स्नान करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बैठे तो बड़े तेजस्वी थे, तेजस्वी सन्यासी, चारों साइड में तेज जैसा फैला हुआ, ये देखकर रामानंद राय इनको देखकर सन्यासी देखकर आकर तुरंत उनको प्रणाम किया। चरण में प्रणाम करते ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनको उठकर खड़े होकर इनको आलिंगन किए, पूछे कि आप रामानंद हो, रामानंद राय हो? तो बोले हाँ, मुझे सर्वम भट्टाचार्य ने आपको मिलने के लिए कहा। तो इसलिए वो जितने दिन वो महाप्रभु रहे वहाँ गोदावरी नदी के राय, प्रत्येक दिन रात्रि में, दिन में तो अपने वो तो राजकार्य में जाते थे, रात्रि में संध्या होते ही वो वापस आते थे, किसके पास? महाप्रभु के पास। सात दिन सात रात जो हाँ जितने दिन महाप्रभु रहे, प्रत्येक दिन पूरे रात कृष्ण कथा में बीतने लगा। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते थे और उत्तर कौन देता था? रामानंद राय। हैं, रामानंद राय कहते थे कि देखो मैं तो केवल एक जंत्र चालित थी, एक जैसे हूँ, आप जैसे जो मुझे बोला रहे मैं वही बोल रहा हूँ, आप स्वयं मेरे से बोला रहे और स्वयं इसको फिर सुन रहे हैं। जो भी है कृष्ण कथा की अधिकारी इनको ही चैतन्य महाप्रभु ने चुना था, किनको? रामानंद राय। रामानंद राय के साथ बहुत विशाल चैतन्य चैतन्य की मध्य लीला की आठ मध्य पूरा विस्तार वर्णन है, बहुत दोनों का वार्तालाप, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप है बहुत विस्तार से वर्णन है, गौड़ीय दर्शन की पूरा सारे गुह्य रहस्य उसमें वर्णन की गई है रामानंद राय के मुख से। पहले तो प्रारंभ किए तो सबसे पहले बोलो सबसे बड़ा शिक्षा तो गीता से प्रारंभ करके फिर एकदम पूरे लास्ट में समाप्त करते हैं, राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं के साथ समापन होती है। तभी वो सब हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, जब ये तो पूरे विशाल विषय वस्तु है, कि प्रथम कहे कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना जीवन का लक्ष्य है, फिर चैतन्य महाप्रभु को ये बाह्य आगे कहेगा, फिर कहे कि सर्वधर्म परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण, महाप्रभु कहे ये भी बाह्य है, ये बाह्य आगे कह, ये भी बाह्य सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ भगवान कहे। तो बाद में फिर वो कहते कि नहीं, जब बहते भागवत की वो श्लोक बोलते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति से वो गाते हैं, ज्ञान प्रयास है उदपास्य नवंत एव, तो भवदीय वार्ता वो जो श्लोक पढ़ते तो पहले यह है कि ज्ञान भक्ति जो होता है ज्ञान कर्म से रहित है, विशुद्ध भक्ति की चत फेरे, उसके बाद फिर रस की चत होती है, दास रस से साख्य रस से वात्सल्य माधुर्य, फिर माधुर्य रस की महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त फिर राधा रानी के चरित्र जो आस्वादन करते हैं, तो वहीं से महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो रामानंद राय को कहते कि देखो रामानंद, तुम्हें मैं अभी दक्षिण भारतीय गश्त करके थोड़े दिन में पूरी वापस जाऊंगा, अब मुझे अनुनय विनय है कि तुम भी तुम्हारे पदवी को त्याग दो, ये जो गवर्नर की पद को त्याग कर कहां आ जाओ, जगन्नाथपुरी में आ जाओ, तुम मेरे अंतरंग भक्त अंतरंग रूप में सदा मेरे पास में रहकर मुझे कृष्ण कथा श्रवण कराते रहो। चैतन्य महाप्रभु के अनुनय को स्वीकार कर लिए रामानंद राय, रामानंद राय उन्हें दर्शन करके समझ गए थे क्योंकि वो स्वयं विशाखा सखी थे, महाप्रभु ने उनको किस रूप में दर्शन दिया, राधा कृष्ण दोनों रूप में। कहते प्रथम देख लो तुम्हें सन्यासी स्वरूप, रामानंद कहते पहले आप तो सन्यासी के रूप में खड़े थे, आस्ते आस्ते में देखा कि सन्यासी स्वरूप जाकर नंदगोप रूप है, नंद नंद नंदलाला बन के कृष्ण के रूप में वंशी धारण करके मुझे दर्शन दिए, अभी ये फिर क्या देख रहा हूं, आप अकेले नहीं हो, आपकी साथ में कौन है, एक कांचन पंचाली का एक तप्तप कांचन गौरांगी, ये क्या देख रहा हूं मैं। चैतन्य महाप्रभु कहते कि देखो रामानंद, मैं तो साधारण सन्यासी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तुम बहुत उन्नत भक्त हो, इसलिए जो उन्नत भक्त होता है स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति, इसलिए आपका इष्ट है राधा कृष्ण, इसीलिए वो आपको सब जगह राधा कृष्ण आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन रामानंद कहे कि नहीं, मुझे ठगने के लिए मत प्रयास करो, मैं समझ रहा हूं आप कौन है, मैं पहचान लिया हूं है? लेकिन इसीलिए उन्होंने फिर महाप्रभु के अनुनय विनय को स्वीकार करके आके जगन्नाथपुरी में प्रताप रुद्र को कहे कि मुझे और नौकरी नहीं चाहिए, ये गवर्नर का पद मैं रिजाइन कर दिया है। प्रताप रुद्र देव चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जानते हुए बड़ा अच्छा से स्वीकार कर लिए, कहे कि ठीक है आपकी रिजाइनेशन से स्वीकार, लेकिन आपको जो वेतन जो तनख्वाह मिलता था वो तनख्वाह अभी भी तो आपको मिलते रहेगा, आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सदा सदा के लिए नियोजित हैं। तो इस प्रकार रामानंद राय पुरी में आ गए, फिर पुरी में आकर चैतन्य महाप्रभु के साथ सदा अंतरंग लीला करते, कोई कृष्ण कथा सुनने के लिए आता था महाप्रभु के पास, महाप्रभु करते कहते थे कि कृष्ण कथा में सारे सब सब सारे कृष्ण कथा किसकी मुख से सुना, रामानंद राय की मुख से। जो भी प्रद्युम्न मिश्र एक विशेष व्यक्ति आके चैतन्य महाप्रभु को अनुनय विनय किया, थोड़ा कृष्ण कथा सुनाए, महाप्रभु कहे कि कृष्ण से कथा का अधिकारी मैं नहीं हूं, कौन है, रामानंद राय, आप जाओ रामानंद राय के पास कथा सुनो। प्रद्युम्न मिश्र जब गए रामानंद राय के पास में कथा सुनने, देखिए कि रामानंद राय अभी माने इनके साक्षात्कार करना संभव नहीं, वो कुछ अंतर और किसी कार्य में लगे हुए हैं। तो उनके सेवक से जब उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो बोला कि वो जगन्नाथ बल्लभ नाटक एक लिखे हैं और जगन्नाथ बल्लभ नाटक को भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए अभिनय करना, मैंने जब उनके समय समक्ष अभिनय करने के लिए कुछ देवदासियों को युवती लड़कियों को यंग लड़कियां हैं 15-16 साल 17 साल 18 साल ऐसे लड़कियों को उन्होंने एकांत में उनके उनको स्नान करा रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनके श्रृंगार कर रहे हैं, उनको नृत्य सिखा रहे हैं, रामानंद राय हैं, उनको नृत्य भी एकांत में उनके शरीर के गुप्त अंगों को स्पर्श कर रहे, लेकिन उन फिर भी वो अभी इसी कार्य में व्यस्त है। प्रद्युम्न मिश्र कहे कि अच्छी ये ऐसे व्यक्ति फिर इसे कृष्ण कथा सुनना है जो लड़कियों के साथ ऐसा ही लगा हुआ, वापस जाएगी चला गया महाप्रभु, महाप्रभु बोले कथा सुने, लेकिन महाप्रभु के पास कहे कि नहीं मैं सुना इनके नहीं ऐसे चल रहा, महाप्रभु कहे कि तुम बहुत बड़ा गलती किए हो, रामानंद राय वो एक ही व्यक्ति है संपूर्ण विश्व में जो कि संपूर्ण रूप में निर्विकार है, किसी भी स्थिति में उसकी मन में कभी काम वासना जागृत नहीं हो सकता है। मैं सन्यासी हूं, महाप्रभु कहते मैं सन्यासी हूं, लेकिन फिर भी एक पितुली को यदि स्त्री के रूप में ऐसी कपड़ा पहना के रखा जाए उसको देखने से मेरे मन में विकार आता है, लेकिन रामानंद राय मन में कभी भी ऐसा विकार संभव नहीं है, है? यदि वो युवती स्त्रियों के शरीर को एकांत पे स्पर्श कर रही, उनको श्रृंगार कर रही, उनको नृत्य सिखा रही, जो कुछ कर रहा, लेकिन रामानंद राय फिर भी रामानंद राय ही है। जाओ दोबारा उन्हीं से ही कथा सुनो। दोबारा फिर प्रद्युम्न मिश्र आते हैं और माफी मांगकर फिर बोले कि मेरे मन में ऐसा ऐसा विकार आ गया था आपके बारे में, है? फिर उनसे कृष्ण कथा श्रवण करके जाते हैं। इसलिए रामानंद राय स्वयं नित्य सिद्ध परिकर है। किसके? राधा कृष्ण की, गौरांग की। और उनके तिरुभाव तिथि, जब आप जाओगे जगन्नाथपुरी, आप जाओगे ब्रह्म ने अलारनाथ जाओगे, अलारनाथ बा ब्रह्मगिरी शहर का ठीक क्रॉस करोगे साइड बेंटपुर, वो गांव आज भी है रामानंद राय के गांव, लोग जाते आज भी, भक्त लोग जाते आज, राजा आज भी लोग उधर रामानंद राय की परंपरा बहुत ही काम है, उनके वंशज हैं, उनके घर वो जहाँ पर निवास करते थे वहाँ पर और उनके घर है और कुछ दर्शनीय वस्तु है रामानंद राय जो सब यूज करते थे। उनके समय में जब गवर्नर थे उनके पास खड़ग भी था, तरवाल है, मुकुट, ये सब कुछ के कोई भी चीज वो दर्शन कराते हैं। तो इस प्रकार आज रामानंद राय की तिरुभाव तिथि में हम रामानंद राय का ही विशेष आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद की कामना करके ही कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर करने के लिए समय हो चुका बहुत ज़्यादा, यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।